अब आगे फ्लैशबैक। अब संगीता की इस तरह से बेइज्जती होता हुआ देखकर उसका पति कुणाल ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे लेकर वापस घर चला गया था। उसने कसम खाई थी कि आज के बाद संगीता यहां नहीं आएगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। उस दिन के बाद नानी माँ हमेशा के लिए गांव चली गई। फिर एक दिन नानी माँ को उनकी बेटी संगीता का फोन आया। संगीता ने कहा, नानी माँ से मिलना चाहती हूँ और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहती हूँ। नानी माँ बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो जल्दी ही अपनी बेटी संगीता और अपने दामाद कुणाल का इंतजार करने लगी थी। लेकिन संगीता ने अंतिम समय पर गांव जाने का इरादा बदल दिया था। उसने अपनी माँ शारदा जी को फोन करके बोल दिया था कि वो भैया भाभी के घर यानी मनोज और सीमा प्रियंका के माँ बाप के घर ही आ जाए। इसीलिए नानी माँ भी अब शहर वाले घर पर जा पहुंची थी। धीरे धीरे कुणाल एक बहुत बड़े ज्वेलर्स अधिराज रघुवंशी का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया था। उनका दिया हर काम वो आंखें बंद करके किया करता था। अधिराज जी उस शहर के सबसे अमीरों में से एक थे और उनका ज्वेलरी का काम था। वेल, अब कुणाल बड़े ईमानदारी से अपना काम राजी खुशी पूरा किया करता था। तब एक बार रघुवंशी परिवार यानी अधिराज साहब ने एक बड़े ही खूबसूरत पेंडेंट डिजाइन किए थे जिनकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। उनकी कीमत मिलियंस में थी। अधिराज जी ने उस लॉकेट को बनाने में अपनी आधी से ज्यादा जमा पूंजी लगा दी थी और सभी लोग, जितने भी अमीर से अमीर लोग थे, अपनी अमीरी दिखाने के लिए उन पेंडेंट को खरीदना चाहते थे। अधिराज जी ने अपनी प्रसिद्धि के लिए उन पेंडेंट का एक बहुत ही ज्यादा भव्य समारोह आयोजित किया था। वो लॉकेट बिल्कुल सेम, केवल 5 ही डिजाइन किए गए थे क्योंकि अधिराज जी ने उसमें अपनी सारी जमा पूंजी तक लगा दी थी। सिर्फ और सिर्फ उनके पास जमा पूंजी के नाम पर अगर कुछ बचा हुआ था तो सिर्फ और सिर्फ उनका घर बचा हुआ था। लेकिन अधिराज जी को प्रसिद्धि की कुछ ज्यादा ही ललक थी। उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो दुनिया का सबसे महंगा पेंडेंट बनाएंगे तो उनकी प्रसिद्धि सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ मिलकर वो पेंडेंट डिजाइन किए थे जो सबसे ज्यादा महंगे थे। लेकिन 5 से ज्यादा वो बना नहीं पाए थे क्योंकि उन पेंडेंट्स को बनाने के लिए जिन धातुओं की जरूरत होती थी वो उन्हें और ज्यादा खरीद नहीं पाए थे क्योंकि जमा पूंजी के नाम पर उनके पास अब केवल एक घर ही बचा था और अपने रघुवंशी मेंशन को वो बेचना नहीं चाहते थे। वेल, उन्होंने इसका एक बड़ा ही भव्य समारोह आयोजित किया था और उस समारोह में देश के नामी गिरामी अमीर लोगों को निमंत्रण दिया गया था। साथ ही साथ जब न्यूज़पेपर में उस पेंडेंट की एक छोटी सी फोटो और उसकी तारीफ एक प्रेमी जोड़े ने देखी तो उनकी आंखों में भी चमक आ गई थी। और तब उसकी खूबसूरत बीवी ने अपने पति के गले में बाहों का हार डालकर बोला कि वो ये लॉकेट लेना चाहती है, उसे हर हाल में ये पेंडेंट चाहिए। उसका पति, जिसका नाम राजवीर जिंदल था, मुस्कुराकर अपनी बीवी के होठों को चूमते हुए बोला, तुम्हारे लिए मैं इस दुनिया की सारी खुशियां लाकर दे सकता हूँ, तो ये पेंडेंट क्या चीज है। आप मेरे साथ कल इस समारोह में चलिए, मैं वहीं आपको अपने हाथों से ये लॉकेट पहनाऊंगा। जैसे ही उसने अपनी पत्नी नैना से ये कहा, नैना के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूब गए थे। वहीं दूसरी ओर अधिराज जी के समारोह की पूरी जिम्मेदारी कुणाल और संगीता दोनों ने अपने कंधों पर उठा ली थी क्योंकि उस समारोह में अधिराज ने कुणाल को उसकी पत्नी को लाने को भी कहा था। इसलिए संगीता भी उस वक्त वहां मौजूद थी और वे सब लोगों को अच्छे से वेलकम करने लगे थे और बहुत ही अच्छे से समारोह चलने लगा था और जल्दी ही पूरे 5 पेंडेंट को एक बड़े ही खूबसूरत तरीके से पेश किया गया था जिस पर सबकी नजरें जाकर थमसी गई थी। सब बड़े ही ध्यान से पेंडेंट को देखने लगे थे क्योंकि उनकी खूबसूरती ही ऐसी थी। देखने में भले ही नॉर्मल लग रही थी लेकिन जैसे ही उसको पास से देखा जाता था और कुछ देर तक उनको देखा जाए तो लोगों की आंखों में एक अजीब सी खुशी की चमक आ जाती थी क्योंकि उससे ज्यादा खूबसूरत चीज कुछ हो ही नहीं सकती थी। वहीं राजवीर, जो कि अपनी पत्नी नैना के साथ वहां पहुंच चुका था, जैसे ही वहां गया और उसने देखा कि वो पेंडेंट रियल में ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था तो वो भी खुश हो गया था कि फाइनली अपनी पत्नी को वो उसकी पसंद का तोहफा देगा। क्योंकि राजवीर को शुरू से ही आदत थी, अगर उसकी पत्नी उसे कुछ भी करने को कह देती थी, राजवीर उसी वक्त वो काम किया करता था। एक बार तो उसकी पत्नी ने एक औरत के झुमके देख लिए थे। वो झुमके बड़े ही खूबसूरत और बड़े बड़े से झुमके थे और नैना को वो झुमके पसंद आ गए और उसने राजवीर से ख्वाहिश की कि वो झुमके पहनना चाहती है। राजवीर ने एक नज़र उस औरत को, जो कि उस वक्त शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी, देखा और अगले ही पल, केवल आधे घंटे के अंदर अंदर, उसने वो झुमके लाकर नैना के हाथों में थमा दिए थे और तभी वो नैना को वहां से लेकर घर की ओर रवाना हो चुका था।
और पूरे के पूरे शॉपिंग मॉल में हल्ला मच चुका था कि किसी आदमी ने एक औरत के दोनों कानों को काट लिया और कानों को बाथरूम में फेंककर झुमके लेकर चला गया। हालांकि ये खबर सुनने में बेहद मामूली सी थी, लेकिन ये खबर हमें इस बात के बारे में जानकारी देती है कि राजवीर जिंदल अपनी पत्नी नैना के पीछे किस कदर पागल था। उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपनी पत्नी से बेहद प्रेम किया करता था और अब हर हाल में वो उस पेंडेंट को पाना चाहता था ताकि वो अपनी पत्नी को वो पेंडेंट गिफ्ट कर सके, क्योंकि उसकी पत्नी ने जब से उस पेंडेंट चेन के बारे में तारीफ सुना था तब से उसने अपने पति के सामने ख्वाहिश जाहिर कर दी थी कि वो पेंडेंट पहनना चाहती है। राजवीर उस पेंडेंट को हर हाल में हासिल करना चाहता था, क्योंकि राजवीर भले ही पेशे से एक न्यूरोलॉजिस्ट था लेकिन असल में वो कितना ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी में रहता था इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। लोगों की जान वो चुटकियों में ले लिया करता था। एक तरह से अपना एक अलग ही तरह का गुंडा राज उसने कायम करके रखा हुआ था और जल्दी ही अब नैना और साथ ही साथ राजवीर जिंदल दोनों समारोह में आ पहुंचे थे जो अधिराज जी ने आयोजित किया था। राजवीर को तो पूरा का पूरा यकीन था कि आज वो पेंडेंट खरीदेगा, लेकिन तभी अधिराज रघुवंशी की अनाउंसमेंट सुनने के बाद राजवीर के माथे पर बल पड़ गए थे। वहीं नैना का चेहरा मुरझा गया था क्योंकि अधिराज जी ने अनाउंसमेंट किया था, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस पार्टी में आए और इन पेंडेंट के लिए यहां आए, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि ये सभी पेंडेंट अब सेल आउट हो चुके हैं। आई होप आप सब लोग उन लोगों का स्वागत करेंगे, सो प्लीज मिलिए श्री अवधेश सिंह राठौर से और साथ ही साथ मिले हमारे विदेशी दोस्तों से। ऐसा बोलकर जल्दी ही अधिराज जी ने चार फैमिली को वहां इंट्रोड्यूस किया और सभी के हाथों में वो पेंडेंट था जो उन्होंने अपनी अपनी खूबसूरत बीवी के गले में पहना दिया था। मिस्टर अवधेश सिंह राठौर मिस्टर अमरेंद्र सिंह राठौर के पिता यानी अबीर सिंह राठौर के दादाजी थे और बाकी के तीन लोग विदेशी थे। वेल, तभी नैना की आंखों में आंसू आ गए थे और राजवीर ने जैसे ही अपनी पत्नी नैना की आंखों में आंसू देखे तो उसकी आंखें हैरानी के मारे फैल गई थीं, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था लेकिन अपनी बीवी की आंखों में इतना सा भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वेल, तभी राजवीर तुरंत स्टेज पर गया था और अधिराज जी के सामने खड़ा होकर बोला, देखिए मिस्टर अधिराज जी, इसमें से एक पेंडेंट मेरी बीवी को बेहद पसंद आया है तो इसीलिए मैं वो आपसे परचेज करना चाहता हूँ। जैसे ही राजवीर ने ये कहा, जितने भी लोग उस समय वहां समारोह में आए हुए थे सभी लोग पूरी तरह से हंसने लगे थे,
क्योंकि सभी लोग राजवीर द न्यूरोलॉजिस्ट को अच्छी तरह से जानते थे। तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, अरे क्या आपने सही से नहीं सुना, ये पेंडेंट पागलों के डॉक्टर के लिए नहीं है, अरे इसकी कीमत चुकाने में तो आपकी एड़ियां तक घिस जाएंगी। तभी भीड़ में से किसी और ने भी जवाब दिया था, लगता है दूसरों का इलाज करते करते ये डॉक्टर खुद पागल हो गया है, क्योंकि वहां पर कुछ अमीर लोग ऐसे भी थे जिन्हें वो पेंडेंट खरीदना पानी का मलाल था। वो भी डेस्परेटली पेंडेंट को खरीदना चाहते थे और समाज में अपना नाम बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उस पेंडेंट की कीमत उनकी बस के बाहर थी। और जब डॉक्टर ने वो पेंडेंट खरीदने की बात की तो सब अपनी तरफ से अलग अलग तरीके से डॉक्टर का मजाक उड़ाने लगे थे। तब अधिराज जी ने बड़े ही पोलाइट तरीके से डॉक्टर की ओर देखते हुए कहा, माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, लेकिन अब ऑलरेडी मैं ये पेंडेंट सेल कर चुका हूँ और मैं अपना बेचा हुआ माल वापस नहीं ले सकता, क्योंकि मैं अपना माल ही नहीं बेचता हूँ, अपनी जुबान देता हूँ अपने कस्टमर को। ऐसा बोलकर अधिराज जी ने साफ साफ पेंडेंट देने से मना कर दिया था। हालांकि राजवीर ने उन्हें मुंह मांगी कीमत भी ऑफर की थी कि वो उस लॉकेट की मुंह मांगी कीमत तक देने को तैयार है, लेकिन उसे वो पेंडेंट चाहिए था। लेकिन अधिराज जी जो कि अपनी जुबान के पक्के थे, उन्होंने साफ साफ राजवीर को मना कर दिया था। राजवीर वहां खड़े हुए परिवारों को लाल सुर्ख आंखों से घूर कर देख रहा था जिनके हाथों में वो पेंडेंट थे। अब राजवीर की पत्नी नैना के लिए ये सब देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था कि उसकी पसंदीदा चीज इस वक्त किसी और के गले में है, तो इसीलिए वो लोगों के ताने सुनकर और एक नज़र अपने पति की ओर देखकर वहां से चली गई थी। वहीं राजवीर ने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था। हालांकि उसका चेहरा एकदम नॉर्मल था, लेकिन उसके अंदर क्या तूफान मचा हुआ था इसके बारे में कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। जल्दी ही उस पेंडेंट का समारोह खत्म हो चुका था और सब जो विदेशी लोग थे वो ऑलरेडी उस पेंडेंट की सही कीमत अदा करके विदेश जा चुके थे। और इस बार अधिराज जी ने अपनी विदेश के अकाउंट में ही अब उस पेंडेंट की रकम जमा करवाई थी। और अधिराज जी के दोस्त अवधेश राठौर, जो कि अबीर सिंह राठौर के पिता अमरेंद्र थे, उन्होंने भी उस पेंडेंट की रकम अधिराज जी के विदेशी अकाउंट में ही ऐड करवाई थी, क्योंकि अधिराज जी ने अपनी एक ब्रांच अब विदेश में खोलने का फैसला किया था। क्योंकि अधिराज जी को प्रसिद्ध होने का बहुत ज्यादा शौक था, तो इसीलिए वो देश विदेश में प्रसिद्धि हासिल करना चाहते थे। वो उस वक्त अधिराज जी बेहद खुश थे,
और ठीक 7 दिनों के बाद उनकी लाडली पोती का जन्मदिन आने वाला था और कहीं ना कहीं वो उनकी पोती का नाम गोरी, जो कि अब 1 हफ्ते बाद 1 साल की होने वाली थी, उसे अपना लकी चार्म मानते थे, क्योंकि उसके आते ही वो लोग काफी ज्यादा अमीर बन चुके थे और साथ ही साथ उन्हें बड़ा ही खूबसूरत और सबसे महंगा पेंडेंट बनाने की प्रसिद्धि मिली थी, तो उसका सारा श्रेय वो गोरी को ही दे रहे थे। अधिराज जी ने एक लॉकेट अपनी प्यारी और खूबसूरत सी पोती गोरी के लिए रखा था। उनकी खूबसूरत सी पोती का नाम गोरी था, जिसे वो बेहद प्यार किया करते थे, जो उस वक्त केवल 11 महीने की थी। गोरी के पहले जन्मदिन पर उन्होंने वो लॉकेट उसे गिफ्ट करने का फैसला किया था और नेक्स्ट वीक ही गोरी का जन्मदिन था, जिसके लिए अधिराज जी ने बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। वहीं दूसरी ओर राजवीर अपनी पत्नी के पीछे पीछे चला गया था, क्योंकि वहां जाकर वो अपनी पत्नी को समझाना चाहता था और उसे यकीन दिलाना चाहता था कि बहुत जल्द वो उसे लॉकेट ला कर देगा। लेकिन जब तक वो घर पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि राजवीर की पत्नी राजवीर के जैसे ही एक सनकी औरत थी। अगर उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती थी तो या तो सामने वाली चीज को बर्बाद कर दिया करती थी या फिर खुद का ही कोई ना कोई नुकसान कर लिया करती थी, और आज भी उसने ऐसा ही किया था। घर जाकर नैना ने सीधा खुद को हर्ट किया और अपने हाथ की नस काट ली थी। अगर वो किसी चीज को डेस्परेटली पाना चाहती थी तो वो पाना ही चाहती थी, वो भी हर हाल में उसे चाहिए होती थी। लेकिन जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि उसका पति शायद उसके लिए वो पेंडेंट नहीं ला पाएगा, और ऊपर से जो सब लोग उन पर वहां हंस रहे थे और उसके पति को मेंटल कह रहे थे, तो ये बात वो टॉलरेट नहीं कर पाई थी। वहीं दूसरी ओर राजवीर जैसे ही अपनी पत्नी के पीछे पीछे घर पहुंचा और घर जाकर उसने ये देखा कि उसकी पत्नी खून से लथपथ वहां पड़ी हुई थी। उसने जल्दी ही उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकामयाब हो गया था। ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अब तो राजवीर जिंदल आग बबूला हो उठा था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी के शुरू से लेकर आज तक हर जायज नाजायज हर ख्वाहिश को पूरा किया था। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी को बच्चे पैदा नहीं हुए थे, लेकिन सड़क किनारे खेलती हुई एक बड़ी ही प्यारी खूबसूरत सी बच्ची उसकी पत्नी को पसंद आ गई थी।